مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ، اور صبح سے آپ ہمارے پروگراموں میں چرچا سن رہے ہیں بھارت میں دلی میں ہونے والے انتخابات کا، جس میں عام آدمی پارٹی کو واضح برتری حاصل ہے اور وہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ تو ہم صرف دلی کے الیکشن کی بات نہیں کریں گے بلکہ حالیہ ریاستی انتخابات کی بات کریں گے، جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بی جے پی کو، جو ظاہر ہے کہ سینٹر میں ہے، اس کو کئی ریاستوں میں مایوسی کا سامنا ہوا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ کون سی ترجیحات ہیں جس پر ایک عام ووٹر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے اور ووٹ دیتا ہے، اور کس جگہ کانگریس پارٹی کا، خاص طور پہ اس لیے ہم ذکر کریں گے بی جے پی کے ساتھ کہ کانگریس پارٹی اور بی جے پی سے مقابلہ تھا عام آدمی پارٹی کا۔ تو کچھ ایشوز پر ظاہر ہے کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس میں مماثلت نظر آتی ہے، تو اسی پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ریاستوں میں بی جے پی کی مقبولیت کم ہوئی اور عام آدمی پارٹی کس طرح اس تسلسل کو برقرار رکھ سکی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ بھارت میں کانگریس پارٹی کے اسپوکس پرسن میم افضل صاحب ہیں۔ میم افضل صاحب نہ صرف یہ کہ سیاست سے ان کا تعلق ہے، سابق پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، بلکہ یہ ایک ممتاز صحافی بھی ہیں۔ السلام علیکم میم افضل صاحب۔ میم افضل صاحب
جی بول رہا ہوں میں
تو تھوڑا سا، وعلیکم السلام، اور تجزیہ آپ کریے تھوڑا سا ہمارے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ عام آدمی پارٹی جیتی، بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی نے کس طرح کوئی بھی نشست حاصل نہیں کی۔ کیا وجوہات ہیں اس کے؟
یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلی جو ایک مرکز ہے بھارت کا، اور جہاں ہمیشہ کانگریس کی پارٹیاں سرکاریں بنتی رہیں، پچھلے چناؤ کے اندر بھی اس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی اور اس بار بھی تقریباً وہی ہوا ہے۔
جی،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلی کے عوام کا فیصلہ ہے، اور جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ جو فیصلہ ہو اس کو پولیٹیکل پارٹیز قبول کریں، اور بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف توجہ دے، اپنی کمیوں کی طرف بھی توجہ دے، وہ کام ہم یقیناً کریں گے، پہلے بھی ہم نے کیا ہے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ بھارتی جنتا پارٹی کا جس طرح سے پاور میں آئی 2014 میں،
جی،
اس کے بعد سے جو اس کا مسلسل پروپیگنڈا اور ایک طرح کا پلانک ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے پولرائزیشن اور بانٹنے کی راجنیتی، جس کو ہم پورے ملک میں کہتے ہیں کہ ملک میں ایسا ماحول پیدا کر دو کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے ڈرنے لگے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں ایک عجیب و غریب سیاست جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، جس میں 110 کروڑ لوگ اکثریت میں ہیں اور باقی لوگ اقلیت میں ہیں، جن کی تعداد 20 سے 25 کروڑ بھی نہیں ہے، اور اس میں کئی اقلیتیں ہیں۔ بھارتی جنتا پارٹی نے کامیاب سیاست یہ کی ہے کہ اکثریت کو اقلیت سے ڈرانے کا کام کیا ہے، اور اقلیت کو اکثریت سے ڈرانے کا کام کیا ہے۔ یعنی پہلا موقع ہے جب باقاعدہ وہ اس بات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے اقلیت کو، جو بہت کمزور ہے، اس کو ایک بہت بڑا دشمن بنا کر چھوڑ دیا ہے، اور جو اکثریت ہے اس میں سے کچھ، ظاہر ہے کہ ساری اکثریت ایسی نہیں ہے، اللہ ہی وہ فرقہ پرست ہے، ورنہ تو اس ملک کے اندر آزادی کے 70 سال کے بعد بھی آج ہندو مسلمان سب رہتے ہیں، اور یقیناً چھوٹی موٹی اختلافات تو ساری دنیا میں ہر ملک میں ہوتے ہیں
جی جی
اکثریت اور اقلیتوں کے درمیان, لیکن بھارت کے اندر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ مختلف چیزوں کے نام لے کر کے انہوں نے ان کا ٹارگیٹ ہمیشہ اقلیت رہتی ہے, اس سے اس کو فائدہ ہوا ہے. اور ظاہر ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں ان کو صرف 31% ووٹ ملے تھے, 33% ووٹ ملے تھے اور ان کو بہت زیادہ سیٹیں مل گئی تھیں. اس کے بعد پھر 2019 کے اندر بھی ان کو 50% سے کم ہی ووٹ ملے تھے اور ان کو کافی 300 کے قریب سیٹیں مل گئی. یہی راجنیتی وہ دلی میں بھی کر رہے تھے
جی,
لیکن جب پارلیمنٹ کا چناؤ ہوا تو دلی میں کل 7 سیٹیں ہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اور دلی کو پوری ریاست کا درجہ حاصل نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ریاست بھی ہے اور ایک یونین ٹیریٹری بھی ہے ایک طرح سے. یہاں لیفٹیننٹ گورنر جو ہوتا ہے وہ دوسری جگہ اسٹیٹس کی طرح.
میں تھوڑا سا میم افضل صاحب آپ کو یہاں پہ روکوں گی کیونکہ آپ خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ پورے شو میں ہیں اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ جلدی جنہیں جانا ہے, اور میں مجھے پتا ہے کہ تھوڑے سے آپ کو گلے میں بھی کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا اپنا گلا بھی صاف کر لیجیے اس دوران. تو ہمارے ساتھ پرتاپ سوم وانشی صاحب ہیں, ہندوستان ٹائمس کے ہندی سیکشن کے جو ایڈیٹر ہیں. وانشی صاحب شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اور میم افضل صاحب سے جب بات ہو رہی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس نے اکثریت کو اقلیت سے ڈرانے کا کام کیا ہے, تو ایک تو اس پہ میں آپ کے کمنٹ چاہوں گی, اور دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 2014 جب وہ آئی تھی 2014 میں پہلی بار بی جے پی, تب وہ اقتصادی ایشوز کو لے کر آئی تھی, اس وقت یہ تھا کہ کانگریس پارٹی کا ہمیں نظر آتا تھا کہ اسے ناکامی رہی خاص طور پہ نوجوانوں کی روزگار کے سلسلے میں اور اقتصادی ترقی میں, تو وہ یہ نعرہ لے کر آئی تھی. تو جب سے اب تک کیا تبدیلی آئی ہے اور کیا وجہ ہے کہ دلی میں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہے اس نعرے کو؟
دیکھیے کئی چیزیں آپ نے جوڑ کے ایک ساتھ رکھ دی ہیں, تو میں ایک ایک کر کے بہت ان بریف بتاتا ہوں.
جی جی جی,
جب 2014 میں آئے تھے تو ان کے ساتھ جو ان کی امیج تھی کہ یہ پولرائزیشن کریں گے, جو ان کی امیج تھی کہ یہ اس طرح کی ہیٹ کی پالیٹکس کریں گے, تو وہ کانسیس سب کانسیس میں کیا تھا یہ ایک الگ چیز تھی. لیکن تب جب 2014 میں مودی جی ووٹ مانگ رہے تھے تب وہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے, امپلائمنٹ کی بات کر رہے تھے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو جو 2014 میں ووٹ دیا تھا لوگوں نے وہ صرف کوئی ریلیجن کے آدھار پہ اور ان کو ووٹ حاصل نہیں ہوئے تھے. 2019 میں آتے آتے ان کو وہ انہوں نے پھر 2019 میں مکس کر دیا کیونکہ اپنی سرکار کا پرفارمنس بھی کا بھی جواب دہی تھی, تو کچھ ڈیولپمنٹ کی بات تھی اور کچھ انہوں نے تمام سارے ایشوز تھے ایسے اٹھائے مائنورٹیز کے حصے کے وہ ایشوز اٹھائے جو کہیں نہ کہیں پولرائزیشن کے پالٹے آتے ہوں, تو یہ اپنی پولیٹکس اس آرڈر میں لے آ رہے ہیں.
جی,
دلی کی بات یہ ہے کہ دلی میں ان کا ہی ایکسپیریمنٹ فیل ہوا ہے. دلی میں اگر چناؤ عام آدمی پارٹی کی جیت کی بات کی جائے تو ایک برس پہلے بھی اگر آپ مجھ کو فون کر کے پوچھنی کہ کون جیت رہا ہے تو میں کہتا عام آدمی پارٹی جیت رہی ہے. 2 برس پہلے بھی الیکشن ہوتا تو عام آدمی پارٹی 5 سال سے سرکار میں ہی چلا رہی ہے, 5 سال سے الیکشن لڑ رہی ہے اور 5 سال سے ہی ان کے بارے میں پرسپشن ایسے تھے, کبھی ان کا سینٹیمنٹ نگیٹو نہیں ہوا. لیکن اب پارلیمنٹ میں کے الیکشن میں لوگوں نے مودی کو پریفر کیا. آج بھی بہت سارے ووٹ ایسے ملے ہیں عام آدمی پارٹی کو, بہت سارے ووٹ ایسے ہیں جو پارلیمنٹ میں بی جے پی کو دیتے ہیں. تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا اگر کوئی نگیٹو جا بھی رہا ہے, کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے, تو اس کا نیشنل لیول پہ کبھی لوگوں سے اگر بات کریں تو کوئی الٹرنیٹ دکھتا نہیں ہے. अब ये स्टेट वाइज कुछ स्टेट कांग्रेस जीती है, छत्तीसगढ़ वहाँ झारखंड में अभी जीते जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, वहाँ जेएनएम एक लोकल पार्टी है। तो लेकिन जो भी बीजेपी की नाकामियां हैं इसका कोई बेनिफिट लेने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही है। तो जो लोग बीजेपी के खिलाफ एक अल्टरनेटिव की बात करते हैं या बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी बात, तो वो अम्ब्रेला कांग्रेस ही हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक बीजेपी को अभी नेशनल लेवल पे कोई खतरा नहीं।
अच्छा, तो भारत भूषण साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टेलीविज़न से एक डेली प्रोग्राम करते हैं, मेरा ख्याल है संडे के अलावा हर दिन, राजनीति के नाम से। तो राजनीति ही की बात है, भारत भूषण साहब ये बताइए कि क्या कहता है आप राजनीति के बारे में। अभी इन्होंने कहा कि इसका कोई असर जो कुछ रियासती इंतखाबात में है हमें नज़र नहीं आएगा पार्लियामेंट के इंतखाबात में, तो आप भी ऐसे ही समझते हैं?
मैं इनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है कि दिल्ली का जो इलेक्शन है एक वॉटरशेड इलेक्शन है। वॉटरशेड इलेक्शन इसलिए है कि दिल्ली के जो वोटर्स हैं उन्होंने कम्युनलिज्म को, डिविजिव पॉलिटिक्स को, हेट पॉलिटिक्स को बिल्कुल नकार दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। आप कहेंगे क्या दिल्ली पूरे भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है? जो इश्यूज बीजेपी ने उठाए वो ऑल इंडिया इश्यूज थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उसको न केवल भारत के मुसलमानों ने बट भारत के हर धर्म के लोगों ने नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने दिल्ली में भले ही आज आम आदमी पार्टी के काम पे, डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने चलाए जिसमें गरीब आदमी भी जाके अपनी ट्रीटमेंट करा सकता है, उस पे वोट दिया हो, लेकिन उसी पे वोट नहीं दिया है। वोट भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ दिया है कि आपका हेट पॉलिटिक्स इस देश में काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूँ इंडियन माइनॉरिटीज को। हिंदुस्तान के मुसलमान ने बीजेपी को फेल कर दिया है, दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में। कैसे फेल किया है? बीजेपी की हमेशा स्ट्रैटेजी रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान का मुसलमान बताना, उसके इक्वेट करना, उनको फिफ्थ कॉलमनिस्ट बताना कि ये एंटी नेशनलिस्ट है, इनकी सिंपथी तो वहां पर है। इस बार आप देखेंगे जितनी भी प्रोटेस्ट हुई हैं उन प्रोटेस्ट के सिंबल सारे नेशनल सिंबल से, ट्राई कलर तिरंगा झंडा, पुलिस आती थी तो लोग नेशनल एंथम गाते थे। उनके हाथ में फोटो किसकी थी? उनके हाथ में फोटो थी महात्मा गांधी की, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मौलाना आजाद की, हाथ में एक ही किताब थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब जगह पूरे इस इलेक्शन में, पूरे दिल्ली में और पूरे भारत में जगह जगह पे लोगों ने पब्लिकली कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा कि भारत क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो ये इनका जो हेट का पॉलिटिक्स था वो सेक्युलरिज्म से, नेशनलिज्म से नकारा गया है भारत के सब वर्गों द्वारा, सब क्लासेस द्वारा। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है, इसका इम्पैक्ट ऑल इंडिया होगा, इसलिए मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो बड़ा इलेक्शन कभी भी आएगा उसमें ये बात कायम रहेगी और बीजेपी इस हेट पॉलिटिक्स का इस्तेमाल उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाएगी जितना पहले कर पाती थी।
दुरुस्त। और मैं मीम अफजल साहब एक दफ़ा फिर आपके पास तरफ आऊँगी और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अभी हमारे दोनों जो तजियाकार हैं उन्होंने बड़ी तफसील से बात की इस चीज़ पर कि किस चीज़ का नुकसान हुआ बीजेपी को, तो अभी भारत भूषण साहब जो बात कर रहे थे कि दिल्ली में जो जलसे जुलूस निकले उसमें एक वाज़े शक्ल नज़र आई हमें कि एक आम जो इंडियन है उसने रिजेक्ट कर दिया इस बांटने वाली सियासत को, तो कांग्रेस पार्टी इससे क्यों नहीं फ़ायदा उठा सकी इस चीज का, यानी इसका बेनिफिट कांग्रेस को क्यों नहीं मिला हमें फिर भी बीजेपी?
मैं कहूंगा कि भारत भूषण साहब ने जो कुछ भी कहा उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जब मेरे मुंह से ये सारी बातें निकलती तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट दूसरा होता। भारत भूषण ने अगर ये सब बातें कही, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट मैं उनको शुमार करता हूँ आज भारत के अंदर जो जर्नलिज्म हो रहा है। और इस वक्त जब भारत का मीडिया पूरी तरह से एकतरफा होकर कार्रवाई कर रहा है, वो आज भी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और ईमानदारी और कहना चाहिए न्यूट्रलिटी और कहना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी जो है उनके जर्नलिज्म में हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, मैं उसके एक लफ्ज से भी ये नहीं कह सकता कि मुझे इख्तलाफ है। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। देखिए, जहाँ तक बात है, इसमें आपका बड़ा अहम सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, उसको कामयाबी मिली और आज जब ये तब्दीली आ रही है तो कांग्रेस उसे कैश नहीं कर पाई। मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखिए, पिछले एक साल के अंदर चुनाव हुआ पंजाब असेंबली का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में और झारखंड में, ये सब स्टेट्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है और सब जगह, महाराष्ट्र को छोड़ के हर जगह उसकी सरकार बनी है, झारखंड को और महाराष्ट्र दोनों जगह पर कोलिशन गवर्नमेंट में महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी कांग्रेस शामिल है। गोया भारतीय जनता पार्टी की जो पोलराइजेशन की राजनीति है पिछले एक साल से, उसकी बैक कहना चाहिए, उसको वापस, उसकी वापसी शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा खेल है, बड़े पैमाने पर है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हिंदुस्तान के मीडिया का 90% से 90% से ज्यादा जो है उसको आज आम तौर पर गोदी मीडिया कहा जाता है, बिका हुआ मीडिया कहा जाता है, और वो हर चीज को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, बहुत सारे इश्यूज आए, ये सही कहा हमारे जो हिंदुस्तान टाइम्स के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए अभी बात कर रहे थे आपसे, जी, उन्होंने बात सही कही कि जिस वक्त 2014 में मोदी जी आए थे तो उस वक्त उनका चेहरा ये फसादात की वजह से कमनल होने के बावजूद उन्होंने डेवलपमेंट को अपना मुद्दा बनाया था और लोगों ने सोचा था कि शायद कोई नई राजनीति जो है मोदी जी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। परफॉर्मेंस के नाम पर पिछले 5 साल का उठा करके आप देखें रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी को जीरो है। मैं जीरो इसलिए कह रहा हूं कि किसी चीज में भी उन्होंने कोई नुमाया काम करके नहीं दिखाया, बल्कि जो हमारे प्रोग्राम भारतीय कांग्रेस पार्टी के जरिए से आए थे उन्हीं का नाम बदल बदल के उन्होंने एक तरह से वो एक कार्बन कॉपी बनने की कोशिश की उसने। और जब 19 का चुनाव आते आते उन्होंने देखा कि उनकी मकबूलियत में कमी आई तो दोबारा से उन्होंने भरपूर तरीके से कम्युनलिज्म को जो है वो प्लैंक बनाया। और इन्होंने बड़ा सही कहा, आज हमारे यहाँ भारत के तमाम टेलीविजन चैनलों पर पता है क्या होता है, शाम को डिबेट्स होती है जिसके अंदर 1.5 घंटा 2 घंटे की डिबेट हर एक चैनल के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान पर होती है। एक तरह हम पाकिस्तान को हम कहते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं हमारे से, और सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान का हमारा वाकई कोई मुकाबला नहीं है। अलावा एक न्यूक्लियर पावर होने के कंपैरिजन अगर आप करें इकोनॉमिकली, तालीमी तौर पर या किसी भी चीज में, टेक्नोलॉजी में, हथियारों में, हर चीज में हिंदुस्तान बहुत आगे है, बड़ा मुल्क है, लेकिन हमको ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान दरवाजे पर खड़ा हुआ कभी भी अंदर आ जाए, जबकि हमारे पास एक बड़ी फौज है। तो ये पाकिस्तान की राजनीति, ये जो दूसरे सीरिया और बगदाद और कहां पर जो कुछ होता रहा है, उस सबको भारत में इस अंदाज से दिखाया जाता है कि ये किरदार है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का और उसके जरिए से पोलराइजेशन फैलाने का काम किया जाता है और टारगेट किया जाता है इंडियन मुस्लिम्स को। ये बात मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसा नहीं है, पावर हासिल करने के लिए इस सोच को लेकर वो पिछले 125 साल से काम कर रहा है और उन्होंने पहले अंग्रेजों के जमाने में इसी सोच को लेकर के अंग्रेजों का साथ दिया, आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों की मदद की और आजादी के बाद आज वो सबसे बड़े देश के रक्षक यानी के बचाने वाले और सबसे ज्यादा कहना चाहिए हुब्बुल वतन हो गए हैं।
अच्छा, मैं यहाँ पे एक वजाहत करना चाहती हूँ,
हर शख्स जो है
जी
वो गद्दार हो गया है।
अच्छा, मैं एक वजाहत यहाँ करना चाहती हूँ अपने सुनने वालों के लिए कि हमने इसमें दावत दी है, ज़ाहिर है कि जो स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, शाहनवाज हुसैन साहब बिजी थे और उन्होंने वादा किया है कि आधे घंटा प्रोग्राम के आधा घंटा ख़त्म होने के बाद वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, तो जो कुछ मीम अफजल साहब की तनकीदें या भारत भूषण साहब ने जो बात की, ये सारी बातें हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं एक दफ़ा फिर वांशी साहब से ये पूछना चाहूँगी, ये इंतखाबात तो हो गए लेकिन ज़ाहिर है कि आप सब जी फरमाइए।
मैं एक बात और कह दूंगा
जी
कि आज जो चुनाव हुआ है इसके अंदर कांग्रेस क्यों हारी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ
जी।
अभी पिछला जो पार्लियामेंट का 2019 का चुनाव हुआ था, असल में दिल्ली के अंदर सिचुएशन आज ऐसी है कि तीन पार्टियां मेन चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम पार्टी एंड आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। पिछले चुनाव में अकलियत का जिक्र अभी भारत भूषण साहब ने कहा, बिल्कुल सही है, 10 सीटें ऐसी हैं जो उनके वोट से ही डिसाइड होती हैं, और ओवरऑल पूरी दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे सभी जगह पर लोग रहते हैं माइनॉरिटीज के। तो इस पिछले पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के दरमियान में वो सेकुलर वोट बढ़ गया था जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था।
अच्छा, तो यानी जो हम आहंगी है आप लोगों के नजरिए में
पूरी 7 की 7 सीटें यानी 70 की 70 विधानसभा यानी असेंबली की सीटों को पार्लियामेंट में कन्वर्ट करके देखे जीत गई थी। इस बार जब चुनाव हुआ तो लोगों ने ये सोचा कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे, और कांग्रेस जाहिर है एक नेशनल पार्टी है, हम पार्लियामेंट में उसको वोट देंगे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में केजरीवाल के चेहरे को देख करके वोट दिया, चूंकि उनका डेवलपमेंट का काम है, उन्होंने बताया अपना काम, तो उसमें डिवीजन ना होने की वजह से आज कांग्रेस पार्टी की हालत हुई है। उसके अलावा भी कुछ कमियां हैं जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं,
तो इन पर हम अभी तफसील से बात करेंगे और मैं अपने बाद में आने वाले जो हमारे एनालिस्ट हैं उनसे सवाल भी पूछूंगी कि कांग्रेस को किस हद तक फायदा होगा बमा आपके। लेकिन मैं इस वक्त ये पूछना चाहती हूँ वांछी साहब से कि अब जो इंतखाबात होने वाले हैं वो बिहार और बंगाल में हैं, तो वहाँ आपकी क्या प्रोजेक्शन है, वहाँ पे क्या नजर आता है आपको वांशी साहब? अंजुम, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। वांशी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, अच्छा फिर हम यही मीम अफजल साहब, भारत भूषण साहब की भी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो मैं आपसे ये अच्छा आप हैं हाँ, तो फिर आप मुझे ये इसके बारे में अपना प्रोजेक्शन बताइए कि क्या कहते हैं आप बिहार और बंगाल।
देखिए, बिहार का इलेक्शन जो है वो कास्ट लाइंस पे ही होगा, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को एडवांटेज है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है बिल्कुल डिसयूनाइटेड है। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल लालू प्रसाद यादव का वो कहीं नजर नहीं आ रहा है इस समय। लालू यादव जेल में है, लड़के उनके आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अब सोचना पड़ेगा कि अगर पूरा मुल्क कम्युनिज्म को रिजेक्ट कर रहा है तो क्या उनका इंटरेस्ट इसी में है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे या अकेले चुनाव लड़े। तो एक सवाल उनके सामने ये होगा। दूसरा ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीता है, इलेक्शन जीता है लोकल इश्यूज पे, सस्ती बिजली फ्री, बल्कि 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सस्ता पानी, मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्कूल, तो ये जो वेलफेयर मेजर्स है ये उनको लागू करके इससे फायदा होगा या बीजेपी की जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है उसके साथ जुड़कर फायदा होगा, ये उनको सोचना पड़ेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, ममता बनर्जी बहुत ही पॉपुलर लीडर है और वहां कम्युनिज्म फैलाने से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा हो। कितना फायदा होगा कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पार्टीशन जब हुआ उसके कारण केवल पंजाब और नॉर्थ इंडिया में कम्युनलिज्म रहा, वो भूल जाते हैं कि बंगाल का पार्टीशन बंटवारा 2 बार हुआ, और जितना कम्युनलिज्म आपको पंजाब में मिलता है उससे दुगना आपको बंगाल में मिलता है। तो हो सकता है कि कम्युनलिज्म से पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बीजेपी को फायदा हो। तो दिल्ली के इलेक्शन को आप इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन 30% से ज्यादा वोट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट है, माइनॉरिटी वोट है
जी।
वो वोट ममता बनर्जी के खाते में जाएगा और इससे ममता बनर्जी को फायदा होगा, क्योंकि भारत के मुसलमान ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, जो रिलीजन के नाम पे सिटीजनशिप देना चाहता है उसको उतनी ही जोर से नकारा है जितने दिल्ली और बाकी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नकारा है। तो मुझे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ पश्चिम बंगाल में भी नजर नहीं आता।
अच्छा प्रताप सोमवंशी साहब से हमारा कनेक्ट हो गया फोन, मैं अच्छा उनका फ़ोन फिर कट गया, तो आप ही मुझे भारत भूषण साहब इसका जवाब दीजिए कि जो मीम अफजल साहब ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली में तो मुकाबला, क्योंकि उनको लगा लोगों को कि बराबर ही बात है आप कांग्रेस को वोट दें या आम आदमी पार्टी को दें, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इनके प्रोग्राम यकसा थे और
ये नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल
नहीं, 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 मैं ये नहीं कहा।
अच्छा इलेक्शन में खास थी नहीं,
मैंने ये नहीं कहा, मैंने
मेरी आवाज आ रही है,
ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम बिल्कुल एक जैसे थे
जी।
मैंने सिर्फ इतना कहा कि पहले उन्होंने ये सोच के वोट दिया था कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है इसलिए पार्लियामेंट में उसे वोट डालना चाहिए, सबने डाला, लेकिन वोट डिवाइड हुआ
जी जी,
इसके नतीजे में बीजेपी आप पार्टी भी हार गई और कांग्रेस भी हार गई और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सातों की सातों सीटें मिल गई
जी।
इस बार प्रोग्राम अलहदा होने के बावजूद, राइवल पार्टी होने के बावजूद ये बात बिल्कुल तय थी कि लोग सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी लोकल लेवल पे अच्छा काम कर रही है और रही है 5 साल और उससे बहुत ज्यादा किसी को शिकायत नहीं है तो उसी को वोट डालना चाहिए, अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इसलिए उन्होंने सबने इकट्ठे होकर के आप पार्टी को वोट दिया और कांग्रेस हार गई।
अच्छा ठीक है, तो फिर तो आपने खुद ही वजाहत कर दी इसके अपने, तो मैं वांछी साहब
नहीं, मैं बिल्कुल इनसे मेरे दोस्त हैं मीम अफजल साहब, लेकिन मैं ये कहूंगा कांग्रेस का वोट इस बार भी बटा है, अगर नहीं बटा होता तो भारतीय जनता पार्टी का 2015 के दिल्ली इलेक्शन में 32.2% वोट शेयर था, इस बार वो 39% हो गया, तो ये एक्स्ट्रा वोट कहाँ से आया। इसी तरह से मुझे लगता है कि जो अपर कास्ट लोग हैं उनका वोट जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं उनका वोट तो बीजेपी को गया, लेकिन ऑप्रेस्ड क्लासेस जो हैं, जो स्लम्स में रहती हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहती हैं, जो गरीब गुरबे हैं लोग हैं, उस क्लास के लोगों का वोट आम आदमी पार्टी को गया क्योंकि आम आदमी पार्टी से उन्हें फायदा हुआ। लेकिन इसके बाद मैं ये भी कहूंगा कि मैं मीम अफजल साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि लोगों को लगा कि जो जीत रही है पार्टी, जो बीजेपी को बाहर रख सकती है उसको वोट करना चाहिए,
उन्होंने तकरीबन यही बात कही थी। बिल्कुल अच्छा, तो वंशी साहब
उसे एग्री करता हूँ।
अच्छा वंशी साहब, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम है, जो वेलफेयर के प्रोग्राम है, दुनिया की किसी जगह भी चाहे कितना भी अमीर मुल्क हो चाहे कितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, उनका लेवल फर्क होगा, लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ ऐसे प्रोग्रामों को पसंद ना किया जाए और वोटर उनकी तरफ नहीं जाए। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के प्रोग्राम में क्या इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत कमी है, उन्होंने वेलफेयर का कोई काम नहीं किया, मतलब कि सिवाय इसके के कम्युनल इश्यूज पे ज्यादा बात की?
देखिए प्रोग्राम उन्होंने इस तरह पब्लिसाइज किया कि ये मुफ्तखोरी मुफ्त के लिए ये वोट दे रहे, मुफ्त में लोगों को स्कीम दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि बीजेपी ने खुद जो अपना ड्राफ्ट जारी किया कि वो क्या करेंगे
जी। हेलो आवाज
उनका फोन।
अच्छा
पर मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा मुफ्तखोरी वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये वेलफेयर मेजर्स है।
नहीं उन्होंने ये कहा कि वो बीजेपी के हवाले से बात कर रहे हैं।
सोमवंश साहब जो है कह रहे कि मुफ्तखोरी नहीं है ये जैसा कि आपने कहा कि दुनिया में हर जगह सोशल सिक्योरिटी नेट होता है मार्जिनल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, और आम आदमी पार्टी ने ऐसा ही दिल्ली में किया, लेकिन बीजेपी ने सोचा कि हम कम्युनलाइज भी करेंगे और उनसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर देने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी को दे चुकी थी उन्होंने जो किया वो लोगों के सामने रखा, और जो भाजपा ने कहा जो बीजेपी ने कहा वो एक प्रॉमिस थी, तो लोगों ने असलियत पे वोट दिया, प्रॉमिस पे वोट नहीं दिया।
अच्छा तो वैसे अगर हम मजमूई तौर पे स्टेट्स की बात करें तो कौन सी ऐसी स्टेट्स नजर आती हैं जो कि प्रोग्राम ख्वाह कुछ भी हो, मैं मी मजल साहब से कहूंगी, लेकिन वो
जी
बीजेपी को ही वोट देंगी? और वो कौन सी स्टेट्स हैं जहां कांग्रेस के हर सूरत में जीतने के इम्कान रहते हैं?
देखिए, जहाँ तीसरी तीसरी कोई पार्टी नहीं है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है,
जी
वहां पर मुकाबला दोनों के दरमियान होगा। और मैंने आपको बताया, पंजाब में डायरेक्ट मुकाबला हमारा अकाली दल से था, और पंजाब में वहां भारतीय जनता पार्टी अकाली के साथ थी, लेकिन हमारा डायरेक्ट मुकाबला था। राजस्थान के अंदर कोई तीसरी पार्टी थी ही नहीं, हम जीते
जी।
पंजाब हम जीते। मध्य प्रदेश में कोई तीसरी पार्टी नहीं थी, हम जीते। बीजेपी हारी। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 15-15 साल से सरकारें थी, और दोनों जगह पर हमने हराया उनको बहुत बुरी तरह से। महाराष्ट्र के अंदर हम लोग लड़े इलेक्शन एनसीपी के साथ मिलके, वो शिवसेना के, लेकिन उनको शिवसेना छोड़ दिया, शिवसेना ने उनको, चुके उनकी बहुत सारी चीजों से तंग आ चुके थे
जी।
और हमारे साथ मिलकर सरकार बनाई। इसी तरह झारखंड के अंदर उनका कुछ नहीं निकला, चूंकि डायरेक्ट एक तरह से कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी थी वो आ गई। लेकिन जैसे दिल्ली है या यूपी, मैं आपको कह सकता हूँ यूपी के अंदर वोट का डिवीजन बहुत भारी तरीके से होता है, वहाँ हम लोग उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी डिवीजन ऑफ वोट से हारती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि ये मुफ्तखोरी वाली बात उन्होंने कही अपना, मैं देखिए सीधा सीधा उनका प्लान शुरू में जरूर था कि वो कोशिश कर रहे थे कि कोई अपना प्रोग्राम, लेकिन उनकी समझ में कुछ आया नहीं देने के लिए, तो उनका परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज नहीं है जी। हेलो
जी जी
मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बल्कि आज
तो मैं यही कह रहा था कि इन्होंने लास्ट में अपने प्रोग्राम को बदला। अब जैसे लास्ट मौके पर अमित शाह साहब मैदान में उतरे और प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर ऐलान किया, राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया, यहाँ तक कहा गया हिंद पाक का मुकाबला है एक तरह से, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है, दहशत गर्दी को बहुत बड़ा इशू बनाया गया, यहाँ तक कहा गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को किसकी तरफ इशारा था, CAA उसको लेकर के जो शाहीन बाग का यहाँ पर एक बहुत बड़ा था, उस शाहीन बाग को एक विलन बना के ऐसा बना दिया गया जैसे कि वो शाहीन बाग नहीं है, फलस्तीन है, शाहीन बाग नहीं है, कोई किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा है, पाकिस्तान का कोई हिस्सा है। इस तरह की चीजें बनाकर लोगों को वरगलाने की कोशिश की गई। NRC को लेकर के जो यहाँ पर एक तरह से कश्मकश का हाल है, मैं बिहार बिहार की अभी बात कर रहे थे चंद्रशेखर, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि किसी भी हालत में बिहार के अंदर भी एक बहुत बड़ा इशू है NRC, क्योंकि वहाँ के गरीब लोग जानते हैं कि वो बर्थ सर्टिफिकेट 30-30, 40-40 साल के नहीं ला के दे सकते हैं, लिहाजा उनको पहले गैर मुल्की बनाया जाएगा, चाहे वो बाद में हिंदू होने की बुनियाद पर करार दे दिया जाए हिंदुस्तानी, लेकिन कौन इस बात को पसंद करेगा कि जो 5,000 साल से रहता आया है इस देश के अंदर, आज अचानक आप उसको कागज न होने की बुनियाद पर आप उसको कह दें कि आप गैर मुल्की हो, और उसके बाद कहे ये लीजिए सर्टिफिकेट, आज से आप हिंदुस्तानी होगा।
खुशकिस्मती से हमारे साथ इस वक्त अंजलि भारद्वाज हैं, जो कि NRC पे बहुत इनका काम है, ये जिन इश्यूज पे काम करती हैं वो पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो अंजलि हमारे साथ आयसद मीम अफजल साहब बात कर रहे थे, इनके अलावा भारत भूषण साहब हमारे साथ हैं और प्रताप सोमवंशी साहब थे जो इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। मैं आपसे अब यहाँ ये पूछूंगी कि NRC का वैसे कुछ असर पड़ा है ये जो रियासती चुनाव है इनके ऊपर, क्योंकि वो तो एक एक या दो रियासतों की आसामी की बात है ज्यादातर तो।
जी देखिए, अभी जो हमारे देश में मौजूदा हालात हैं, आर्थिक मंदी का बड़ा जोर है, और साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक रिकॉर्ड हाई पे है, 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई है, और लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो बातचीत हो रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सुनने को मिलती है, जो पार्टी है पावर में अभी सेंटर पे BJP और उनके अलाइज उनसे सुनने को मिलती है, वो CAA, NRC, NPR इन सब मुद्दों के ऊपर बात सुनने को मिल रही है। तो कहीं पर ये एक लोगों का एक परेशानी है कि जो उनके असली मुद्दे हैं उन पर बात ना होकर, उन पर गौर ना होकर कहीं पर ये पूरा ध्यान भटकाया जा रहा है और ये CAA, NRC, NPR की बातें करी जा रही हैं जो कि एक तरह से बहुत बांटने वाली और धर्म के नाम पर बांटने वाली बातें लोगों को लग रहा है कि ये हैं। अब आप कह रही हैं कि जो NRC है वो केवल असम में ही हुआ है, लेकिन जब हमारे देश में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो नागरिकता संशोधन कानून जब पारित हुआ, उसके बाद भी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये क्रोनोलॉजी है जो कि लोगों को समझनी चाहिए कि CAA आता है फिर पूरे देश में NRC होगा और फिर सिटीजन को देखा जाएगा। अब अगर हम देखें कि असम में जब NRC हुआ तो उसमें 19 लाख लोगों से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि कहा गया कि सिटीजन नहीं है। उसमें से ज्यादातर लोग अंत गरीब जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं वो थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रूव करने के लिए। वैसे वो पुश्तों से भारत में रहते हैं, वो भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कभी कहीं बाढ़ आती है वो डॉक्यूमेंट्स बह जाते हैं, किसी और कारण से नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो लोग प्रूव नहीं कर पा रहे वो सिटीजन है और उसके कारण उनका नाम लिस्ट में नहीं है, NRC में नहीं है, नेशनल रजिस्टर की लिस्ट में। तो उससे अब अगर हम उसी चीज को देखें जितनी दहशत लोगों में फैली NRC, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो उनके बीच, तो वो पूरे देश ने देखा है और उस लिस्ट में फाइनली 19 लाख में से केवल 6 लाख मुस्लिम्स थे और बाकी सब तो ज्यादातर हिंदू लोग थे धर्म के। तो ऐसा नहीं है कि जब NRC होता है तो वो केवल एक वर्ग या एक धर्म के लोगों के साथ ही प्रॉब्लम होती है, वो सबके साथ प्रॉब्लम होती है। और इसलिए ये जो मुद्दा है ये एक जरूर ऐसा मुद्दा रहा है जिसपे लोगों ने लगातार विरोध दर्ज किया है और लोगों को कहीं ये समझ आ रहा है कि उनके बुनियादी और मौलिक मुद्दों को छोड़कर सरकार ये जो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है ये ठीक नहीं है।
अच्छा, मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि इस प्रोग्राम में हमने दावत दी थी राघव चड्ढा साहब को, जिनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है और उनके दफ्तर से बात भी हुई थी। उन्होंने वादा किया था कि जाहिर है कि उनके पास फ़ोनों की कतार लगी हुई थी और मसरूफ थे, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि बीच में अगर जगह मिली वो ज़रूर आएंगे। अंजुम बराबर कोशिश कर रहे हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और शाहनवाज़ हुसैन साहब को भी जो स्पोक्स पर्सन है BJP की। मैं क्योंकि अंजलि आप देर से आई थी हमारे प्रोग्राम में, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आमतौर से जो पार्लियामेंट के इंतखाब होते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी के मामलों पर उतने मरकूज नहीं होते जितने स्टेट इलेक्शंस जो हैं, लेकिन इसके बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी ने पहला चुनाव जीता था तो उस वक्त वो मामला सारा इकोनॉमी का था जिसने उसको कामयाबी दिलवाई थी। तो क्या BJP की तवज्जो हट गई है इक्तिसादी मामलात से, या अब भी उनकी कुछ तवज्जो है और वेलफेयर के लिए करें, किस वजह से उनको जो सेटबैक हुआ उसकी क्या वजूहत है?
देखिए, जो 2014 के चुनाव थे वो विकास के नाम पर पूरी तरह से लड़े गए थे एक तरह से, और मुझे लगता है कि लोगों ने ये सोच कर के जब नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास तो और भ्रष्टाचार से देश को मुक्त किया जाएगा, ये सब जो नारे दिए गए उसमें विश्वास रखते हुए लोगों ने वोट डाला था 2014 में। अब हम देख रहे हैं कि 2019 में भी BJP की जीत हुई है, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर आप देखें तो लोग जहां पर उन्हें रोजमर्रा की चीजों के बारे में चिंता होती है, उन्हें लगता है कि जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो उन्हें बिजली, पानी, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जो है वो अपेक्षा रखते हैं कि राज्य सरकारें उनकी पूरी करेंगी। तो कहीं पर ये जो जिसको हम कह रहे हैं डिसैफ्रनाइजेशन, मतलब के जो बीजेपी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक में उनकी वो इलेक्शन हारे हैं, दूसरे पार्टीज ने सरकारें बनाई हैं। मतलब अगर हम नक्शा देखें भारत का कि बीजेपी की कितनी स्टेट्स थी दो तीन साल पहले और आज कितनी स्टेट्स हैं, तो बहुत स्टेट्स हैं देश में जो कि जहां पर चुनाव हुए हैं और नॉन बीजेपी सरकारें बनी हैं। तो इसका मतलब ये है, साफ नजर आता है कि जहां पर लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है, स्टेट लेवल पे वो बीजेपी की पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है। कहीं पर ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो जो बीजेपी है उसका जो जो डिस्कोर्स है वो लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उन पे कहीं पूरा नहीं उतर रहा। तो ये जो वोट जो पड़ रहे हैं और जो स्टेट राज्य लेवल पर लोग जो इस राजनीति को नकार रहे हैं एक तरह से अगर देखा जाए, तो वो यही सीधा दिखाता है कि लोग राज्य स्तर पे विकास और क्लियरली वोट डाल रहे हैं अपनी जरूरी मौलिक अधिकारों के लिए, और उन्हें लगता है कि वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट ज्यादा सक्षम है उन्हें पहुंचाने के लिए। नेशनल लेवल पे हाँ ये जरूर है कि भारत पाकिस्तान और इंटरनल सिक्योरिटी के देश के मामले, नेशनल सिक्योरिटी के अगर उन्हें विपअप किया जाए तो दूसरे टाइप का एक रिजल्ट जरूर नजर आता है। पर स्टेट लेवल पे ये मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मामला भी है और इट इज वेरी टेलिंग, जो कि कहीं पर बीजेपी को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है।
तो अंजी आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम एक दफा फिर दिल्ली के इलेक्शन की तरफ ही आते हैं। मैं भारत भूषण साहब आपसे पूछूंगी कि केजरीवाल साहब अपनी इंतखाबी मुहिम में वफाकी हुकूमत से दिल्ली को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा करते रहे, जिनमें पुलिस को मरकज के बजाय रियासत की हुकूमत के तहत देने की बात है, तो इन ये इसके कोई इम्कानात हैं और इसका क्या फायदा होगा दिल्ली को?
पहली बात तो इनको देगा नहीं, पुलिस कंट्रोल इनको मिलेगा नहीं। बिल्कुल दिल्ली वैसी है जैसे आपका वॉशिंगटन डीसी है, हाफ स्टेट है। तो यहाँ पे पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेगी, जितना वो मांग ले उनको मिलेगा नहीं, ना ही स्टेटहुड उनको मिलेगी। मुझे तो ये भी डर है कि जैसे कश्मीर को इन्होंने फुल स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, कहीं हारने के बाद ऐसा न करे सरकार कि इसको भी यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश करे, अगर करेगी तो उसके नतीजे बहुत ही इनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन दिल्ली फुल स्टेट बनेगा ये मैं नहीं सोचता हूँ, केजरीवाल जी जितना कहते रहे होगा नहीं ये।
और मीम अफजल साहब आप से मैं ये पूछूंगी कि अभी जो अंजलि ने बात की वो तकरीबन वही बात थी जो आप लोग करते रहे, लेकिन अब एक दफा फिर कांग्रेस पार्टी जो है उसका क्या, जाहिर है कि एक मैनिफेस्टो जो है वो तो पार्लियामेंट जब पार्लियामानी इंतखाब होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ होता है, लेकिन अब जो रियासती इंतखाबात हैं उसमें उसकी स्ट्रेटजी में क्या तब्दीली आपको नजर आती है, क्या तब्दीली वो करेगी?
देखिए स्ट्रेटजी जहाँ तक है हमारी कुछ स्टेट्स, देखिए दिल्ली आप हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो जो सबसे बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा वहाँ काम करने की जरूरत है। वो पार्टी हमारी समझ रही है और हम लोगों ने काम भी शुरू किया है। वहाँ का इंचार्ज जो है प्रियंका गांधी साहब का जो हमारी लीडर है उनको दिया गया है, वो जाती तौर पर वहाँ पर आजकल बहुत एक्टिव है। क्योंकि जब तक चूंकि सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश से आती है पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ पर हमारी काफी अर्से से सरकार नहीं रही है और हमारे मेम्बरान बहुत कम रहते थे। तो मैं ये कहूँगा हमारी तवज्जो सभी तरफ है, लाहिर एक नेशनल पार्टी है, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि रीजनल पार्टीज की वजह से हमको नुकसान पहुंचता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें मेरी एक जाती राय है। जाहिर है मैं पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, इसको पार्टी की राय ना समझा जाए। जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, जहाँ हमारी डायरेक्ट साइट है वहाँ आवाम हमारे साथ हैं, आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2014 के बारे में अभी कहा गया है यहाँ पे, देखिए डेवलपमेंट के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगा था, उसमें तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिससे पूरे देश बड़ा अट्रैक्ट हुआ था।
इसमें पहला तो ये था कि मैं ब्लैक मनी लेकर आऊंगा और ब्लैक मनी इतनी है कि जब वापस आएगी तो हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाले जा सकेंगे। वो 15 लाख रुपए तो क्या 15 रुपए आज तक नहीं आए, वो वादा पूरा नहीं हुआ, ब्लैक मनी आई नहीं। वो आप कहाँ से, किस ब्लैक मनी की बात कर रहे थे जिसका नाम लेकर कांग्रेस को बदनाम किया? दूसरा अहम वादा इन्होंने किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को ये रोजगार देंगे।
जी हाँ,
पिछले 5 साल के अंदर जो सरकार रही, 2 करोड़ों को नौजवानों को रोजगार देने की बजाय 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार और हो गए। 10 करोड़ तो नहीं दिए, तो यार वो 11 करोड़ जो है वो नौजवान जो है वो इनको शिकायत है कि हमें ना रोजी मिली और ना रोटी मिली और उसके साथ साथ हमारी और नौकरियां चली गई। तीसरा वादा इन्होंने किसानों से किया था। किसान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, और एक जमाने में 70% लोग जो है वो गाँव में रहते थे और वहीं से असल में वोट की ताकत होती थी। अब वो कम हो गई है तादाद काफी, 60 के से भी थोड़ा नीचे चली गई है। अब उनको इन्होंने वादा किया था कि हम मूल लागत यानी जो आपका खर्च आएगा फसल के ऊपर उसका 1.5 गुना आपको देंगे, यानी इस पर 50% प्रॉफिट मिलेगा, जो किसान को आमतौर पर 2-10% मिलता है। आज की तारीख में किसान को शिकायत है कि उसकी आमदनी जो है वो मूल लागत के ऊपर 2-3% 4% से ज्यादा नहीं है। सारी स्कीम्स किसान के खिलाफ जा रही है, सारा पैसा जो है वो इसी तरह बैंकों से तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजीपति यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने बैंकों से कर्जे लिए हैं उनके तो माफ कर दिए गए, लेकिन किसानों का पैसा जो है जो बेचारों ने लिया 1-2 लाख रुपए अपने फसल के लिए, बीज के लिए, आपाशी के लिए जो कुछ काम किए थे उन्होंने, उनका माफ नहीं किया। तो ये जो डेवलपमेंट का प्लान था वो फेल हो गया और 4 साल आते आते उनको लगा कि हमारी सरकार नहीं रहेगी, लिहाजा उन्होंने अपने दूसरा जो प्लान है उसको इख्तियार किया और जो पोलराइजेशन का है जिसमें ये सब चीजें आई है। और ये मैं आपको बता दूं, ये आप देखते हैं, आपने देखा होगा सारा, मैं बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है, आपका तो दुनिया भर में सुना जाता है, लोग ये समझ रहे हैं कि शाहीन बाग कहीं लखनऊ में एक दो जगह है। अगर आप दिल्ली के उर्दू अखबार देखें, उत्तर प्रदेश के उर्दू अखबार देखें, जिसके अंदर रियल रिपोर्टिंग हो रही है इनकी, ये जो खवातीन बैठी हुई है और उसके अंदर सिर्फ मुसलमान औरतें नहीं है, उसमें बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम औरतें भी आती हैं, उनकी तादाद आप अगर लगाए तो इस वक्त दिल्ली को छोड़ करके अगर आप पूरे मुल्क में देखें तो कम से कम 250 जगह पर इस तरह के धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं और पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है। उसको नेशनल मीडिया दिखाता नहीं है, नेशनल टेलीविजन चैनल जो है वो दिखाते नहीं है। उर्दू के अखबार के अंदर जो तस्वीरें आती है, मैंने कल ही गिना है 25 तस्वीरें तो कल के उर्दू अखबारों में अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग शहरों के और छोटे कस्बों तक के अंदर लोग बैठे हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, और उनकी मांग हमेशा बहुत पुरमन पीसफुल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 18 लोगों को गोली मारी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ये हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ये कन्फर्म करेंगे मुझको, और जिस तरह से मारा गया है वो सारी वो सब चीजें तस्वीरें उसके वीडियो तमाम के तमाम चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पुरमन एहतजाज को आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ा नुकसान इस देश के अंदर जो पहुंचा रही है मौजूदा पार्टी वो ये है कि इनटॉलरेंस फैला रहे, कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और ये आप ये समझिए कि 130-35 करोड़ का मुल्क, अगर वहां से टॉलरेंस अगर खुदा ना खास्ता खत्म हो गया तो इस मुल्क में कितनी बड़ी एनार्की फैल सकती है, इसका ख्याल ही नहीं है किसी को।
असल में मीमजल साहब, मुझे
चीज मानता हूँ,
बदकिस्मती हमारी ये है कि
बहुत मामूली चीज मानता हूँ, ये तो आएंगे जाएंगे
जी,
लेकिन हमारे लिए देश ज्यादा सबसे ज्यादा अहम है। हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इस देश के अंदर पैदा नहीं हुए, हमने चुना है इस देश को, हमारी मट्टी यहीं पर है, हमारी कब्रें यहीं पर है और यहीं पर बनेंगी, कोई किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। जो हिंदू है वो यहीं रहेगा, उसका शमशान यहीं है, और मुसलमान का कब्रस्तान यहीं है, ईसाई का कब्रस्तान यहीं है, कौन हमको लेगा?
मैं जो बात कह रही थी कहना चाह इससे पहले वो ये थी कि बदकिस्मती से शाहनवाज साहब ने फोन नहीं उठाया, बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे पॉइंट्स दिए, ऐसे बहुत से इश्यूज को उठाया जिस पे जरूरी था कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ होते और उनका जवाब दे सकते, लेकिन वो बारह कोशिश अंजुम हैरल गिल हमारे प्रोड्यूसर हैं बार बार उनको मिला रहे हैं, अभी तक वो हमें नहीं मिले, तो कुछ फोन मुझे उनकी शक्ल से लग रहा है कि कुछ मिला तो है उनको, लेकिन कौन मिले मुझे। अच्छा अंजलि हमारे साथ हैं एक दफ़ा, तो अंजलि 5 मिनट बाकी हैं। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो मालियाती ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जिस इशू पे काम कर रही है वो बॉन्ड्स का इशू है, जिसमें आपका कहना है कि 6,000 करोड़ BGP ने इस्तेमाल किए हैं उसमें, तो अगर मुख्तसरन आप हमें बताएं कि क्या इशू है।
देखिए किसी भी जमहूरियत में लोकतंत्र कहिए तो उसमें बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है राजनीतिक लोगों को मालूम हो कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आप ये समझें कि आरटीज को जो पैसा देते हैं वो इसी अपेक्षा से देते हैं, उम्मीद से देते हैं कि पार्टियां अगर जीती तो उनके लिए काम करेंगी, तो अगर बड़े बड़े पार्टियां पैसे दे रहे हैं तो वो उम्मीद रखते हैं कि अगर पार्टी जीतेगी तो पूंजीपतियों के हित में काम करेगी। तो इसलिए उनका बहुत जरूरी है कि किस पार्टी को कौन पैसे देता है, और ये तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट और प्रिंसिपल है, लोगों का सूचना का अधिकार है, और सभी देशों में ये माना गया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में
हेलो
तो लोगों को जी आपको आवाज आ रही
है, आ रही
जी, तो लोगों को फिर जब वो अपना वोट देते हैं उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि वो कैसे वोट दे, इन्फॉर्म ही वोटिंग नहीं आएगी कि वो किसको वोट दे। तो अब इंडिया में 2-2.5 साल पहले BJP एक मनी बिल के जरिए से एक कानून लेकर आई, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बनाई गई है, और उसके तहत जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में उन्हें कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं, और ये गोपनीय रहेगी पूरी तरह से, सूचना किसी को दी नहीं, मुहैया नहीं कराई जाएगी कि किसने कितने पैसे पार्टी को दिए। अब ये जो है इसके तहत अभी तक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों ने लिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और जितनी सूचना अवेलेबल है उसमें से 90% से ज्यादा पैसे भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं। तो अब ये पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये पैसे पार्टियों को जीतने में उनके जो एडवर्टिजमेंट देते हैं उसके प्रचार के लिए, इन सब चीजों के लिए काम आते हैं। तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के ये है अभी, और कोर्ट ने ये कहा है कि बहुत ही गंभीर मामला है। और
तो इससे पहले किसी और पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अंजलि
फॉरेन कंपनीज भी दे सकती हैं, अंजलि जी फॉरेन कंपनीज भी दे सकती हैं पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से, और हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन दे।
लेकिन क्या ये इलेक्टोरल, ये BJP ने मुतारिफ करवाए ये बॉन्ड जैसे पहले थे? ये
नहीं जी, BJP ने करवाए हैं, और इसीलिए करवाए हैं कि लोग
2017 में
फंड करें।
जी 2017
में आए हैं, और 3,000 ही इनको इंट्रोड्यूस करी है इन बॉन्ड्स को, और ये हम इसके खिलाफ रेगुलरली लोग बोल रहे हैं, संगठन बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बहुत चिंता जताई है इस पर कि इससे तो पूरा का पूरा जो हमारा वोटिंग है उस पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर पूरा गहरा असर पड़ेगा। तो ऐसा है कि इस ये जो गोपनीयता है ये लोगों से है, केवल सरकार को मालूम होता है कि कौन कितना पैसा दे रहा है, तो फिर तो जाहिर है कि जो पैसा देते हैं वो उन्हीं को देंगे, सरकार जो चलाते हैं उन्हीं को मिलेगा पैसा, और अभी BJP सरकार चलाती है।
तो मैं फिर एक दफा शाहनवाज हुसैन साहब की अदम मौजूदगी पर अफसोस का इजहार कर सकती हूँ कि वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, गालबन वो मसरूफ थे किसी दूसरे प्रोग्राम में। इसके अलावा राघव चड्ढा साहब को भी हमने दावत दी थी प्रोग्राम में आने की। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन मीम अफसल साहब, अंजलि भारद्वाज साहबा जो कि سرگرم ہے پولیٹیکل ایشوز پر کام کرنے میں اور انفارمیشن کو عوام تک لانے میں, اور بھارت بھوشن صاحب سینئر انالسٹ اور صحافی. اس سے پہلے ہمارے ساتھ شامل تھے پرتاپ سوم وانشی صاحب, ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پروڈیوسر ہمارے انجم ہیرل گل تھے, انجینئر ہمارے پیٹر ہنٹلی تھے, اور شہناز عزیز تھی میزبان اس شو کی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. امریکہ میں کئی عشروں سے صدارتی مباحثے کالجوں کے کیمپس میں ہوتے رہے ہیں. ان میں جمعے کی رات نیو ہیمپشیئر کا ڈیموکریٹک مباحثہ شامل ہے. اس کی وجہ بیشتر سہولتوں کی دستیابی ہے. یونیورسٹیوں میں کشادہ آڈیٹوریم, پارکنگ کی سہولتیں اور میڈیا سینٹر موجود ہوتے ہیں. ساتھ ہی طالب علموں کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ قومی سیاسی مباحثے میں براہ راست شامل ہو سکیں. وائس آف امریکہ کے لیے ایشا سرائی نے نیو ہیمپشیئر میں مانچسٹر کے مقام پر اینسم کالج کا دورہ کیا, تاکہ 2020 کے صدارتی الیکشن کے لیے ایک اہم پرائمری سے پہلے طلبہ کے تجربات کے بارے میں معلوم کیا جا سکے. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. طالب علم اس موقع پر امیدواروں کے لیے رضاکاروں کے طور پر کام کرتے ہیں, سوالات پیش کرتے ہیں اور مباحثوں میں حاضر ہوتے ہیں, یا یونیورسٹی کے اخبار کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. طالب علموں کا ایسا ہی تجربہ سینٹ اینسم کالج میں بھی رہا. انہوں نے محسوس کیا کہ ایک سیاسی مباحثے کی میزبانی سے انہیں اس بات کا موقع ملا کہ وہ ذاتی طور پر اس میں شامل ہو سکیں. سینٹ اینسم کالج سے منسلک جنرل فیسی کے الفاظ.
Father Jerome, who is our advisor, is kind of get me to see the press reaction to all that's going on. So I feel like a lot of the students have a big presence and I feel like they're getting more and more.
میں یہاں سینٹ اینسم کے ساتھ ہوں. میں نیوز ایڈیٹر ہوں. فادر جیروم ہمارے مشیر ہیں. وہ مجھے یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں پریس کے رد عمل پر نظر رکھوں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بڑی تعداد میں طالب علموں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور وہ سیاست میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو رہے ہیں, اور ایسے سوالات مثلاً موسمیاتی تبدیلی اور طلباء کے قرضوں سے متعلق پوچھتے ہیں. لہذا میرا خیال ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں اہم ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور انہیں دوسروں تک پہنچائیں, اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ براہ راست ان میں شامل نہ ہوں. کیمپس کا ہر فرد بہرحال اس بات کا تجربہ حاصل کرتا ہے کہ کسی تقریب کی میزبانی کا احساس کیا ہوتا ہے, یعنی ایک ایسی تقریب جو سارے ملک میں دیکھی جا رہی ہوتی ہے. سینٹ اینسم کی طالبہ کیتھرین گریڈلا کے الفاظ.
So it's really great to see our tiny little campus transformed into something this huge. The debate is happening in our ice arena.
یہ واقعی بہت بڑا تجربہ ہے جب ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا کیمپس کس طرح ایک بڑے مرکز کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مباحثہ ہمارے اس حصے میں ہو رہا ہے جسے آئس ارینا کہا جاتا ہے. مجھے آئس اسکیٹنگ بہت پسند ہے, اور یہ سوچ کر واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ تمام امیدوار کس طرح اسی مقام پر جمع ہوتے ہیں جہاں ہم بہت زیادہ اسکیٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں. تاہم سینٹ اینسم کالج میں طلبہ جو تجربہ حاصل کرتے ہیں وہ مختلف ہوتا ہے, اس لیے کہ نیو ہیمپشیئر ملک کے پہلے پرائمری انتخاب کی میزبانی کرتا ہے. ان طالب علموں کو بھی جو مباحثے میں شامل نہیں ہوتے امیدواروں سے رابطے کے بڑے مواقع حاصل ہوتے ہیں. سینٹ اینسم کالج سے منسلک ریبیکا لیئرسن کہتی ہیں.
We as a student body get to experience this whole thing which is really really cool. And we get to participate in the sense.
ہم بحیثیت مجموعی طالب علم کے طور پر بہت کچھ سیکھتے ہیں جو واقعی بہت زبردست ہے, اور ہمیں اس صورت میں بھی شرکت کا موقع ہوتا ہے چاہے آپ کا سیاسیات کے مضمون سے بہت زیادہ تعلق نہ بھی ہو. یہ الفاظ تھے سینٹ انسم کالج سے منسلک ربیکا لارسن کے۔ منگل کے دن سینٹ انسم کے طلبہ ریاست کے باقی لوگوں کے ساتھ 2020 کے صدارتی انتخاب کے لیے ملک کے پہلے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پرائمری میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔